तो जिस समय में राधा विनोद बिहारी जी की काशी विग्रह प्रतिष्ठित हुआ और उनके साथ साथ में स्वामी महाराज जी का कहाँ से झांसी से लाया हुआ चैतन्य महाप्रभु जी का शिव विग्रह यहीं पर प्रतिष्ठित हुआ, वो भी यहाँ पर आए थे। विग्रह प्रतिष्ठित होने के बाद में ये कृष्ण देख रहे हैं ना गौर वर्ण के, राधा जी जैसे गौर वर्ण की हैं वो भी गौर वर्ण। तो बहुत से लोग पूछते थे कहीं तो ऐसा है नहीं। अब इस चीज को समझने के लिए ये गौर रंग के हैं या सफेद रंग के हैं, सफेद माने गौर, इसमें थोड़ा सा उसकी पट भूमिका है, इसमें रूपानुगत्व है। एक रागानुगा भक्ति होती है, एक तो वैधी भक्ति हुई और एक रागानुगा भक्ति होती है और एक रूपानुगा भक्ति होती है। वैधी भक्ति से कोटि गुण श्रेष्ठ है रागानुगा। रागानुगा किसको कहते हैं? कृष्ण के जो रागात्मिक परिकर हैं उनकी सेवा में लोभ देखकर, ये कृष्ण की कैसी सेवा करते हैं, जब हृदय में लोभ हो जाता है उस चीज को पाने के लिए बड़े प्रीति से उसका अनुगमन करते हैं, तो इनको कहते हैं रागानुगा। जिसके हृदय में अनुराग है और अनुराग से कृष्ण की सेवा करते हैं उनको रागात्मिक कहते हैं, रागानुगा कहते हैं। ऐसे रागात्मिक लोगों का भाव पाने के लिए हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है और तब उनके अनुगत्य में जो भजन किया जाता है उनको कहते हैं रागानुगा। कुछ लोग भूल करते हैं, रागानुगा और रागात्मिका को एक मान लेते हैं, बड़ा भारी भूल है। बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, हमारे गौड़ीय वैष्णव को भी ऐसा देखा है, वो भूल कर देते हैं, वो रागानुगा को भी रागात्मिका कह देते हैं, किंतु यह बड़ी भूल है। रागात्मिका सिद्ध स्थिति है और रागानुगा भी साधन भजन अभी चल रहा है। ये रागानुगा वैधि से भी विलक्षण है, जिनके अंदर में लोभ उत्पन्न हो जाता है और उनका अनुगमन करते हैं तो ये होता है रागानुगा। ये होती है आरंभ रुचि, जो होती है ना वो रुचि से आरंभ होती है, गैलप करके चलते हैं। पूर्व जन्म का संस्कार प्लस इस जन्म का संस्कार दोनों मिलकर के ऐसे गुरु का अनुगत्य लाभ करके उनके हृदय में रुचि से ये भक्ति आरंभ होती है, कौन रागानुगा। और वैधि कहां से होती है? साधु संग, फिर इसके बाद में साधु संग पहला, फिर साधु संग दूसरा, इसके बाद में गुरुकरण, इसके बाद में गुरु से शिक्षा दीक्षा, उसके पश्चात में अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा, इसके बाद में रुचि आई। और ये लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर में पूर्व जन्म का संस्कार है, ये गैलप करके रुचि से आरंभ करते हैं और बहुत ही सरल रूप में, सहज रूप में उनकी भक्ति क्रमशः रुचि से आसक्ति और आसक्ति से साधन के प्रति आसक्ति और साध्य के प्रति पश्चात में उनकी आसक्ति और इसके बाद में शुद्ध सत्व उनके हृदय में आता है। अब लाखों कोटि साधकों में से रागानुगा के रूपानुगा केवल एक होते हैं, बिरले। ये रूपानुगा किसको कहते हैं? कोटि कोटि लोगों में से जो रूपानुग होगा वो रागानुगा तो जरूर है ही है, प्रत्येक रूपानुग जो होगा वो रागानुग है, किंतु प्रत्येक रागानुगा रूपानुग नहीं है, इस चीज को समझो ना? बिरले होते हैं लाखों कोटि रागानुगा में से कोई एक बिरला होता है। गुरु जी ने जब इस विग्रह को प्रतिष्ठा किया यहां तो उन्होंने एक विनोद बिहारी अष्टक लिखा, जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जब गोकुलानंद जी की प्रतिष्ठा की जो कि राधा रमण की गली में वहां पर हैं, तो उन्होंने गोकुलानंदाष्टकम, किसी ने कुंज बिहारी अष्टकम, किसी ने केशवाष्टक, उन्होंने ही केशवाष्टक, किसी ने गोविंदाष्टकम, किसी ने गोपीनाथ अष्टकम, ये सब लिखे। गुरु महाराज जी ने राधा विनोद बिहारी अष्टकम एक लिखा, उसमें क्या लिखा, यह रूपानुगुण का भरा हुआ। कैसे रागानुगा होते हैं वो अधिकांश कृष्ण के तरफ में झुके होते हैं, जितने रागानुगा होंगे साधारण रूप में उनका प्रवृत्ति किधर झुकी रहेगी, कृष्ण के तरफ में। कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाए और गोपियां बिलबिलाती हुई रोते हुए उनको खोजती फिरी, श्याम किधर गए श्याम किधर गए, और ऐसे तन्मय हो जाएंगी कि वे पशु पक्षी कीट पतंगों से और लताओं गुलमों और पेड़ों से भी पूछती हैं ये समझदार है ज्ञान है कि नहीं है, ये मनुष्य है कि क्या है, ये सब नहीं कुछ सबसे पूछती हैं। एक तुलसी से पूछी, कदम्ब के वृक्ष पदम्ब को कहेंगी ये पुरुष है, ये कृष्ण का सखा है, तुलसी को सोचेंगी इनकी प्रिया के रूप में देखेंगी, इस तरह से वो पूछती हैं। गुरु कहते हैं हमारे गुरु जी ये रूपानुग है, तो इनका विचार क्या है, रागानुगा का विचार में भी जो स्पेशल विचार है। तो साधारण लोग कृष्ण जब अप्रकट हो जाए अंतर्ध्यान हो जाता है तो गोपियां बिलबिलाती ही सब जगह खोज रही हैं कृष्ण को ना? और गोपियां की विरह की अवस्था का वर्णन करते हैं, आज तक गोपियों के विरह में कृष्ण का विरह किसी ने वर्णन नहीं किया ना? आ रहा समझ में, सब लोगों ने कृष्ण के विरह में गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया, हमारे गुरु जी ने कहा जी हम ऐसा नहीं करें, हम रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। अरे राधा जी कृष्ण के विरह में तड़फेंगी क्यों, कृष्ण तड़फें राधा जी के विरह में, ये उनका भाव। इसलिए कृष्ण चिंता निवेशेन राधा चिंता निवेशेन जस्यकान्तिर्विलोपिता, श्री कृष्ण चरणं वंदे, मैं ये कृष्ण का वंदना नहीं करता ने? मैं किस राधा जी की वंदना करता, कृष्ण की वंदना करता हूं। राधा जी के अंतर ध्यान होने पर कृष्ण उनकी चिंता में ऐसे विभोर हो गए, उनकी श्यामल कांति लुप्त हो गई और गौर कांति उनकी हो गई, सभी कुछ वैसा ही बंसी रही, उनका ये सब कुछ रहा किंतु हो गए कैसे, एकदम गौर बरने के हो गए, चिंतन करते 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 उनका गौर कांति आ गई। इसलिए कृष्ण का यहाँ पर विरह दिख रहा है, राधा चिंता निवेशेन जस्य कांति विलुप्ता, जस्य किसकी, कृष्ण की, ऐसे जो कृष्ण है राधा जी के भाव में विभोर होकर के ढूंढते 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 और अपनी कांति को विलुप्त करके राधा जी जैसी कांति पा ली, ऐसे राधा जी के द्वारा आलिंगित जो विग्रह जो है कृष्ण है, ऐसे कृष्ण की चरण की मैं वंदना करता हूं। तो ये है कौन, यही है गौ, महाप्रभु का रूप क्या है, राधा जी के द्वारा आलिंगित ये कृष्ण का, कृष्ण ही है वो महाप्रभु जी, इसलिए इस विग्रह को ऐसा किया, यह है रूपानुगत्व। यह रूप गोस्वामी के विचार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विचार, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम ठाकुर इत्यादि का विचार, हाँ सनातन गोस्वामी बृहत भागवत में भी ऐसा दिया है, इसलिए इसमें विचार है। कृष्ण के तरफ में जो रहने वाली धनिष्ठा प्रभृति जो है चंद्रावली प्रभृति हैं वो रहे हैं, हम तो रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा पक्ष राधा की जी की ही सेवा करने वाली, यही भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, ये गुरु जी का एक वैशिष्ट्य है। इसके बाद में अचिंत भेदाद्वैत तत्व जो कुछ है सब वो आठ श्लोकों में पूरा वर्णन कर दिया, जिसको अच्छी तरह से देखना है वो राधा विनोद बिहारी अष्टक देखेंगे। गुरु जी अभी बहुत सी चीजें याद आ रही है ना, और एक लहर के द्वारा ऐसे मालूम होता है वो फिर याद ही नहीं, पचासों तरह सी चीज आती है और फिर वो लुप्त हो जाए, फिर अफसोस होता है जो उन चीजों को उस समय क्यों नहीं कहा, अभी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर विचार आ रहे थे। हाँ एक समय की बात है, कहीं बैठे हुए थे, बहुत से शिष्य लोग थे, तो किसी की उद्दंडता उन्होंने देखी, तो सब लोगों को बतलाते हुए एक शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र वर्णन किया। शंकराचार्य के प्रधान प्रधान चार शिष्य थे, अद्भुत श्रुतिधर, मंडन मिश्र, हस्तामलक। अभी यार सबने भूल गया, ये सब आजकल आलोचना है। चार उनके पद्मपाद सुरेश आचार्य, ये चार अद्भुत बड़े विद्वान, जिनकी स्त्री ने, मंडन मिश्र की स्त्री ने शंकराचार्य को परास्त कर दिया था पहले। ऐसे ऐसे सब लोग विद्वान, अभी वर्षा चाहे तो अभी वर्षा देते थे, कर्मकांड के विद्वान थे वो मंडन मिश्र। शंकराचार्य ने सबको हराया किंतु किसी भक्त को नहीं हराया, वैष्णव को नहीं हराया, किसी भी वैष्णव को नहीं हराया। यदि वो जाते किसी वैष्णव के पास में तो हार जाते, इसलिए किसी वैष्णव के पास नहीं गए। और भागवत का उन्होंने ग्रहण, भागवत के ऊपर में टीका इत्यादि नहीं लिखा। तो वो कह रहे थे गुरुजी, एक समय बद्रिकाश्रम में शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे, 3 बजे उनका प्रवचन आरंभ होता था, 5 बजे तक 2 घंटा उनका प्रवचन होता था शाम को, और समय वेदांत का अनुशीलन होता था। वेदांत के ऊपर अनुशीलन का शारीरिक भाष्य, शारीरिक जो शंकराचार्य ने लिखा था, जगत को मोहन करने के लिए उसको वो पढ़ाते थे, उसका प्रचार करना चाहते थे कलयुग में भक्ति को आच्छादित करके, तो वो पढ़ाने के लिए व्यस्त थे। उनका एक शिष्य जो था पढ़ा लिखा नहीं था, जिसको सब लोग मूर्ख कहते थे, वो उनके कपड़े धोता और उनका भोजन बना देता और विश्राम के समय में उनके पैर दबा देता और उनकी सबकी सेवा करता था, उनकी शंकराचार्य। तो वो धोने के लिए कपड़ा चला गया उस पार में, और उस समय उसमें गंगा में भगीरथ में कुछ बाढ़ सी आई थी और कुछ आकाश मेघ में थे, इसलिए कपड़े जल्दी से नहीं सूख सके, कुछ विलंब हो गया। इधर में ठीक 3 बज गया, सब लोग आ गए, शंकराचार्य भी बैठ गए प्रवचन करने के लिए बैठे गए, किंतु प्रवचन नहीं कर रहे। कुछ बड़े बड़े जो विद्वान थे, पद्मपाद सुरेश आचार्य हस्तामलक इत्यादि, गुरु जी आरंभ के लिए कुछ नहीं बोले, 2 मिनट देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं गंगा की तरफ में, वो जल्दी से आ जाए तब आरंभ करो। किंतु उन लोगों की सब्र की गंगा का बांध थी वो टूट जा रहा है, जल्दी से आरंभ कर दिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद में करीब करीब 15 मिनट हो गया, तो ये रुकाते हैं जिसे, अरे उसके लिए आप रुक रहे हैं, वो तो कुछ समझता नहीं है, मूर्ख है, उसके लिए कोई उठाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं समझता, संस्कृत कुछ नहीं जानता। ठीक, जो तनमन से जो सेवा करते यही भक्ति है, विद्वता भक्ति नहीं है। उन्होंने सिखलाया जो लोग तनमन से सब प्रकार से जो सेवा गुरु जी की करते हैं उनके हृदय में ये ऐसा आता, विद्वता से भक्ति नहीं आती। नैम आत्मा प्रवचन न लभ्य हो न मेधया बहुनाश्रुते न जम एव ये सब विमृते ते न लभ्य तस्स आत्मा विमृते तनुसार। उसकी सेवा के वृत्ति को देख करके अपने आप कृपा पात्र के रूप में भगवान ही भरण कर लेते हैं। ऐसे गुरु भी सेवा की वृत्ति देखते हुए अपना सारा जो कुछ है उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। इसलिए हम लोग गुरु सेवा को, अभी आज जो सेवा हुई, कितने लोग आज, हजारों लोग आए, कम से कम 1.5-2 हजार बच्चे बर्तन मल रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, कितनी, ये सब गुरु सेवा है। इसको दूसरे रूप में मत समझो, ये झाड़ू देना हम क्यों करें। कुछ लोग हैं ऐसे अनुसार विसार के कसरत करने वाले, वो लोग इसको छोटा समझते हैं, ये बेकार की बात है, ऐसा छोटा मत समझो। गुरु जी उस उपदेश के द्वारा ऐसी सब शिक्षा दिया करते। एक बार हम लोग गेहूं खली में मेदिनीपुर में गए प्रचार उनके साथ, वहाँ पर सौती महाराज जी का वो फील्ड था, तो उसके हम लोगों के परिक्रमा में वो लोग सब आते थे, वहाँ पर गए उनके साथ में हम लोग 20-25 ब्रह्मचारी, वो 2-4 ब्रह्मचारी को साथ लेकर के नहीं जाते थे, कम से कम 20-25-30 और गृहस्थ लोगों को भी बुला लेते, 50-60 लोगों का दल बनता, अपने आप प्रचार हो जाता जहाँ पर जाते, प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये प्रचार का ढंग उनका था। तो ऐसे ही गए, बड़ी भारी विराट सभा जमी। जमने के बाद में गुरु जी निर्धड़क रूप में बोलते थे, विश्व में किसी का डर नहीं था। तो उन्होंने आरंभ किया, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं सब समान है, मुड़ी और मिश्री सब समान, गणेश शंकर दुर्गा पार्वती राम कृष्ण सब एक हैं। अरे भाई चलने के लिए रास्ते हैं, और उस रास्ते में कोई घोड़ा गाड़ी से वृंदावन आए, कोई ट्रेन से आए, कोई गधे पर चढ़ करके आए, कोई कार से आए, कोई किसी तरह से आए, वो सब उसी के पास में पहुंचेंगे। किसी प्रकार से उनका नाम ले, उनका भजन करे, सभी एक ही जगह जाएंगे। उदाहरण क्या देते हैं गुरु जी, कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस 50 हैं, 50 पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी छोड़ो, एक जगह में पहुंच जाती है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अरे भाई 50 पोस्ट ऑफिस में 50 चिट्ठी छोड़ो, एड्रेस यदि एक होगा तो एक जगह में आएगी, और एड्रेस यदि दूसरे जगह कहाँ होता है एक जगह आएगी, ये मूर्ख लोगों को बनाते हैं, समझ जाते हैं। उसी प्रकार से जो जितने भी देवता हैं उनकी उपासना करेंगे, वो कृष्ण के पास में कैसे आ जाएगा, ये गलत बात है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में जाने से बहुत ऊंचा हवाई जहाज से सभी कुछ बराबर दिखता है, इसलिए जब साधक सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो सबको एक ही समान, एक ही ब्रह्म के रूप में देखता है। गुरु जी ने कहा यह सब मूर्खों का दल है। कैसे? आकाश में जब हवाई जहाज पर जाते हैं तो आंख की दृष्टि कम हो जाती है, इसलिए छोटा बड़ा एक समय जो दिखता है, उनके देखने से ही एक दूब की घास और आम का पेड़ बड़ा भारी दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। कोई भी चीज बराबर नहीं होती, वो दृष्टि शक्ति की कमी है, इसलिए कोई भी बराबर नहीं है। अरे कृष्ण का भजन करने वाला, द्वारकाधीश का भजन करने वाला, और गोपीनाथ मदन मोहन का भजन करने वाला ही एक ही नहीं है। जब कृष्ण ही एक प्रकार के नहीं, वो कोई जदुकुल में संभूत जो कृष्ण थे वो दूसरे थे कहते हैं, और वृंदावन में रास करने वाले, गोपियों के साथ में नंद बाबा के घर में जन्म लेने वाले, ये कोई दूसरे है। तत्वता एक होने पर भी रसगत एक नहीं है, इन चीजों को लोग नहीं समझते हैं। वहां पर एकदम सब लोग, 50 वहां पर टीचर लोग थे, प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, सब लोगों ने गुरु जी का विरोध किया। स्वामी जी आप ऐसा मत कहिए, उन्होंने कहा जैसा 50 बार कहूंगा, हम आप लोग अपने स्वामी जी को ले आएंगे, गुरु जी तुम्हारे स्वामी जी नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, आपसे तर्क करेंगे। कल सभा बैठे, गुरु जी ने कहा ये मैं 500 रुपया देता हूं, उनको तुम लोग ले आओ। कहने अच्छा 500 रुपया नहीं, हम ले आते हैं, कल आप यहाँ पर ठहरिए, विचार सभा होगी। दुर्गा काली सब एक बराबर है, बस नाम का अंतर है, कजे बुला लाओ। तो गए आने जाने के लिए उनके यहाँ, कजे से कौन बुला रहे हैं, तो गौड़ीय मठ के एक सन्यासी है। भाई हम लोग नहीं जाएंगे गौड़ीय मठ के सन्यासी के पास में, हम लोग डरते हैं, वो जो कहते हैं सिद्धांत से वो ठीक कहते हैं, और उनके सामने हम लोग जवाब नहीं दे सकेंगे। कहिए तो मैं बड़ी विपत्ति में पड़ा, तो हम उनके मुख सामने लेकर के किस प्रकार से जाएं। बड़ी मुश्किल से वो लोग आए नहीं, इसके बाद में लौट करके आदमी, महाराज हम लोग अब बात विवाद आपसे नहीं कर सकते हैं, आप ही की बात ठीक है, वो लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसे धुरंधर थे। आसाम में हम लोग एक बार गए, वहां पर आसाम में हम लोग 50-60 आदमी थे, और सारा वहां पर हंकर देव के उपासक थे। हंकर देव के उपासक माने क्या, केवल कृष्ण को मानते हैं, राधा जी को शक्ति को नहीं मानते। और दूसरी बात, मांस मछली गांजा भांग अफीम सब कुछ खाओ, बस कृष्ण का भजन करने से, अकेले कृष्ण का। उनका हम लोगों का भागवत है 12 स्कंध का, और उनका है 13 स्कंध का। इसलिए वहां पर खड़े होकर के गुरु जी ने भाषण दिया, जिनके मुख में रुधिर रक्त इत्यादि जाता है, जानवरों के मांस और खून खाते हैं, वो गंदी नाली है जिसमें कि पैखाना टट्टी और पेशाब बहता है। सुन करके वहां के सभी लोग बड़े बिगड़ गए, ईंट पत्थर लेकर के तैयार हो गए मारने के लिए, दो एक पत्थर भी चला। गुरु जी ने कहा हम लोग इसका डर नहीं करते, भय नहीं करते हैं इसका। हम लोग प्रचारक हैं, प्राण भी चला जाएगा महाप्रभु जी के लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। अरे प्राण आज न कल तो जाएंगे। इतने में गांव के आधे लोग गुरु जी के तरफ में हो गए और ये लोग भी लठिया और लेकर के तैयार हुए। यदि एक भी ईंटा चला तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके बाद में लोग शांत हो गए। उन्होंने कहा जैसे आप अच्छे ये बतलाइए चैतन्य महाप्रभु भगवान है भगवान नहीं है। गुरुजी ने कहा जी भगवान का प्रमाण सुनेंगे शास्त्र का तहां सुनेंगे भागवत मानते हैं। त्रिविक्रम महाराज जी को आदेश दिया, उन्होंने नोट में लिखा था 40 प्रकार के वो प्रमाण जिसको हमने चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता का प्रमाण हमने उस पुस्तक में संग्रह किया है। बामन महाराज जी के पास में ये सब थे, बाम से त्रिविक्रम महाराज जी ने लिया, उन्होंने लिखा था। वो उठ करके बैठ करके एकदम उठ करके खड़े होकर के और बोलने लग गए, कहा जी हम लोग ये प्रमाण को नहीं मानते हैं। तो कुछ अच्छे तर्क से विचार करो। तर्क में परास्त हो गए, कुछ बोले नहीं। निर्भय सत्य के वक्ता थे, इसीलिए परम पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने उनको उपाधि दी थी पाषंड गजैक सिंह, पाषंड रूप हाथी को दलन करने के लिए सिंह स्वरूप। हमने भी नवदी की भांति यहाँ पर गेट पर, इधर ही गेट है ना, इस गेट पर हमने लगा दिया है सिंह के ऊपर, हाथी के ऊपर में सिंह। सिंह है चैतन्य महाप्रभु और पाषंड कौन है? ये हाथी। पाषंड किसको कहते हैं? धर्म का के आवरण में अधर्म करने वाले सहजिया सखी भेकी स्मात जाति गोसाई, ये 13 प्रकार के गुरु जी ने 39 प्रकार के गिना दिए। जब तक ये रहेंगे शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं होगा, इसलिए सभी धर्म समान नहीं है। भगवान को पाने के लिए एक ही रास्ता है, क्या है? भगवत भक्ति। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को पाने के लिए एक एक ही बात है, क्या है? गोपियों के अनुगत्य में यदि भजन नहीं होगा तो ब्रजेंद्र श्याम सुंदर को कभी भी हम नहीं पा सकते। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चैतन्य चैतामित इत्यादि ग्रंथों में अच्छी तरह से ये सब चीजों को समझाया गया है। गुरु महाराज जी के साथ में और एक समय में यहीं पर बैठा था, गुरु जी यहीं पर आए थे। सर्वेश्वर नाम की एक पत्रिका है, अब तो बंद हो गई। उनका यही काम था जितने संप्रदाय हैं वैष्णव उनमें से जितने बड़े बड़े आचार्य विद्वान हैं उनको छल बल से ये प्रमाण करना कि ये निम्बार्क संप्रदाय के हैं, उनका यही काम था। उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को और किसको किसको, उन्होंने कहा ये गौड़ीय वैष्णव। और उसमें एक दिन एक लेख लिखा, महाप्रभु जी जब बचपन में निमाई पंडित थे तो केशव काश्मीरी नाम के एक निम्बार्क संप्रदाय के धुरंधर विद्वान गए, सब जगह उन्होंने दिग्विजय किया। नवदीप में आए तो वहां के पंडित थर थर आ करके वो एक निमाई पंडित बालक को उनके सामने में खड़ा कर दिया। व्याकरण का एक साधारण पड़ुआ था, बातों की बात में उनको हरा दिया केशव काश्मीरी ने और उनको गोपाल मंत्र की उपासना दी और तब से इनका प्रचार हुआ। पहले इनमें ये राधा कृष्ण का भजन नहीं था। गुरु जी सुनते हैं उनके एकदम खौल उठा, खून आंखें लाल हो गई, कहे कलम पकड़ो। बस कलम हमने लिया और बैठ करके 5 मिनट के अंदर में 30-40 लाइन केवल लिखवाया। हमने उसको अपनी भागवत पत्रिका में उसको प्रकाशित किया। गुरु महाराज एक गौड़ीय पत्रिका और दूसरा मुख पत्र था भागवत पत्रिका, हिंदी में भागवत पत्रिका और बंगला में गौड़ीय पत्रिका जो थी वो पूज्यपाद बामन महाराज जी इसको चलाते थे। तरह तरह से प्रबंध लेकर के गुरु महाराज जी से प्रबंध लेकर के उसको वहाँ चुचुड़ा में हम लोग का प्रेस था, छापते थे। और मैं यहाँ भागवत पत्रिका कुछ उसमें से लेकर के कुछ इधर उधर से लेकर के कभी उनके विचारों को लेकर के उसमें मैं हिंदी में छपाता, उसी में उन्होंने जो लिखा उन्होंने लिखवाया ये निम्बार्क नाम का कोई भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हुआ, यह झूठ बात है। निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति था क्यों? यदि निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति होता तो जीव गोस्वामी जैसे दार्शनिक व्यक्ति उनका उल्लेख करते, यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी ग्रंथ लिखा है उनमें भी मध्वाचार्य का नाम आया, विष्णु स्वामी का नाम आया, रामानुज का नाम आया, और बड़े बड़े दार्शनिकों का नाम आया, निंबादित्य का आया, किंतु निंबार्क का क्यों नहीं आया? अच्छा, निंबार्क का कोई लिखा हुआ ग्रंथ है? कोई भी नहीं है, आज तक किसी ने नहीं लिखा, उसका खंडन मंडन किसी ने नहीं किया, इसलिए निंबार्क नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं थे। लेकर के और पत्रिका में छपाया, अब तो हड़कंप मच गई वृंदावन में चारों तरफ में। उन लोगों ने गुरु जी के ऊपर में मानहानि का केस दिया, 5 लाख रुपए का या कितने लाख का रुपये का मानहानि केस किया। गुरु जी ने उसका उत्तर अपने, उनको वकील के पास में नहीं जाना पड़ता था, उन्होंने अपने से ही एक लेकर के और उसका उत्तर दे दिया। लिखा जैसे यदि 5 लाख का हर्जाना का केस किया करेगा तो समझो केंचुआ खोदते समय में कहीं सांप न निकल आए। केंचुआ जानते हैं, छोटा छोटा सांप न निकल आए, सावधान हो करके करना। इस हर्जाना का भागी तुम होगा, हम नहीं होंगे। और उसी में उन्होंने लिखा, 5 प्रबंधों के सब नाम दिए और कहा जिसे तुमको शक्ति है तो तुम इसका उत्तर देकर के तुम केस करो, हम केस का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अपने वकील के पास में गए और उसको दिखलाए नोटिस का उत्तर। उन्हें ये खबरदार आगे मत बढ़ना, ये बड़ा धुरंधर आदमी है, ये कहीं विपत्ति ला देगा और ये प्रमाण कर देगा जो निंबार्क संप्रदाय नाम का कोई चीज ही नहीं है। असल में संप्रदाय के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, संप्रदाय बिना जे मंत्र ते विफला। इसलिए 4 संप्रदाय हैं, वो कौन? श्री ब्रह्म रुद्र सनका क्षिति पावका, और इसी में उनके अनुगत संप्रदाय में मध्व रामानुज निंबादित्य उसका नाम है, निंबादित्य चतुर्सन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
सदा में मन सभी राधा की माँ। नमो अनंत लीलाय दिवाय नमो अनंत लीलाय मुनिन्द्रबिन्द वन्दिते तिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पङ्कजे कुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजन्तसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीहमङ्कृपाकटाक्षभाजन अशोकवृक्षवल्लरी सीतानमण्डपस्थिते प्रबालबालपल्लव प्रभारुणम् बड़ा भयं पुरत करे प्रभुत संपदा लये सदा परिषसी हमं कृपा कटाक्ष अनंगरंग मंगला प्रसंग भंगुर ध्रुवं च विक्रमं समं भ्रमं निरंतरं प्रशिक्षित प्रसिद्धि नंदनंदने सदा परिषसि हमं कृपा कटाक्ष हरि सुवर्ण चंपक एक गौर विग्रहे पराक कोटि तारे विचित्र चित्र चंचर चकोर चावलोचने सदा परिषसि हमं कृपा कटाक्ष दाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते ज्ञानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यपुण्यराजकामकेलिगोविदे कदा परिषसीहमं कृपा कटाक्ष अशेषहावभावधीरैरारभूषिते प्रभूतसाध कुम्भ कुम्भ कुम्भि कुम्भ प्रशस्त मन्दहर्ष चूर्ण पौर्णशौकसागरे कदा परिषसी हमं कृपा कटाक्ष मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताद्रलाश लोलनील लोचनाभ लललोलन मिलन मनोज मुक्त मोहनाशिते कदा परिषसी हमं कृपा ंबलंबमान पुष्पेला गुणे समाज राज हंस वंश नीपणाम बल्लरी विनम्र चारु चंद्र में सदा परिषसी हमं कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विश्व लोक नम्र कर्म जाति के मात जा पुलो मजाति रंच जावरा अपार दीप 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 सत्पदम ते कदा करीशी
इदिमं अद्भुतं तवं निशम्य भानुनन्दिनि करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव संचित त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल भवेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुचारुकमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं चन्दनं नमामि नन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि सुवर्णरत्नमण्डल विभेदिखण्डमूर्तजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमौक्तिकं चन्द्रतन्त्रमन्दिकं नवाङ्गतङ्गकीकणं नमामि नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनं वरेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं सुकुलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
गौर हरि गो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विजे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्डञ्जागुदरोचिसां विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवास लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायें दामो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकात्तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः